हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध पंचम अध्याय श्लोक नंबर 5, 6, 7। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधारुण बिम्बफलधरोष्ठा पुरेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्व अहं न जानि। यं ब्रह्मावरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति रे ईस्तवे वेदे साङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदोसुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर ശിവാസരി ഗൗരഭക്തവിന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാപുരാൺ കീ ജയ ഹോ. पहला स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 5. आज वेद व्यास जी अपने गुरु महाराज नारद मुनि से अपने हृदय की व्यथा बता रहे हैं और वेद व्यास जी कह रहे हैं, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए. वेद व्यास जी अत्यंत ही विनम्र भाव से अपने गुरु महाराज को कह रहे हैं, व्यास उवाच അസ്തിവമി സർവമിദം ത്വയോക്തം തഥാപി നാത്മാ പരിതുഷ്യതി മേ തന്മൂലവ്യക്തം അഗാധബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത് മഭവാത്മഭൂതം. ജീവമേ സർവമിദം ത്വയോക്തം തഥാപി നാത്മാ പരിതുഷ്യതി മേ തന്മൂലമവ്യക്തമാഗാധബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത്മഭാവാത്മഭൂതം. അസ്ത്യേവമേ സർവമിദം ത്വയോക്തം തഥാപി നാത്മാ പരിതുഷ്യതി മേ തന്മൂലമവ്യക്തം തന്മൂലമവ്യക്തം അഗാധബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത്മഭാവാത്മഭൂതം. അസ്യേവമേ സർവമിദം ത്വയോക്തം തഥാപി നാത്മാ പരിതുഷ്യതി മേ തന്മൂലമവ്യക്തമാഗാധബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത്മഭാവാത്മഭൂതം. അസ്യേവമേ സർവമിദം ത്വയോക്തം തഥാപി നാത്മാ പരിതുഷ്യതി മേ തന്മൂലമവ്യക്തമാഗാധബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത്മഭാവാത്മഭൂതം. ശബ്ദം കാത് വ്യാസ ഉവാച अर्थात व्यास ने कहा, अस्त्येव में सर्वम इदम त्वयोक्तम. अस्त्येव यानी अस्ति यानी है, एव निश्चय ही में यानी मेरा, सर्वम समस्त, इदम यह, त्वया आपके द्वारा, उक्तम कहा गया. यानी कि यहाँ पर वेदव्यास ही बता रहे हैं कि अभी आपने जो कुछ भी मेरे विषय में कहा है, उनके विषय में क्या कहा था, श्लोक नंबर 3 में बोला, जिज्ञासितं समं सुसंपन्नं अपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं स्वार्थापरिव्रीहितं. तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हो गई हैं और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो गया है. इसमें संदेह नहीं है कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों से, फलों की विशद व्याख्या से युक्त है. और आगे बोला श्लोक नंबर 4 में, जिज्ञासितं अधीतं च ब्रह्मयत्तत् सनातनम् तथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थम् अकृतार्थ इव प्रभु. तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान का भली भांति अवगाहन कहा, तो इतना सब होते हुए भी ये मेरे प्रभु अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है. तो यहाँ पर वो अभी वेद व्यास जी कह रहे हैं, अस्तेव मे सर्वम इदं त्वयोक्तम, कि अभी आपने जो कुछ भी बोला है वो
एकदम परफेक्ट, एकदम सही है। मेरे बारे में जो कहा है कि मैंने सब कुछ लिखा है, सारा निराकार का ज्ञान लिखा है, सारा दूसरा वैदिक ज्ञान भी मैंने सब इतना सारा शास्त्र लिखा है, फिर भी तथापि नात्मा परितुष्यति। तथापि मतलब फिर भी, न आत्मा मतलब नहीं हुई है आत्मा, यानी परितुष्यति, मेरी आत्मा जो है वो संतुष्ट नहीं हुई है। तन्मूलम अव्यक्त अगाध, तन मतलब जिसका, मूलम यानी जड़, अव्यक्तम अदृश्य, अगाध बोधम यानी अगाध ज्ञान वाला मनुष्य। अब मुझे नहीं खबर है कि इसका क्या कारण है। पृच्छामि, पृच्छाम है यानी पूछता हूँ, त्वा आपसे, आत्मभव स्वतः उत्पन्न, आत्मभूतम अर्थात संतान, यानी कि आप, क्योंकि आत्मभूतम का मतलब होता है जो जो किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं होते ना, मैंने भौतिक माता पिता के बिना, जैसे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि गर्भोदशाय विष्णु के नाल से जो कंवल उत्पन्न हुआ उनसे उत्पन्न हुए। तो बोला क्योंकि आप उन ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो वो स्वयं वो है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी आदि गुरु हैं। अब क्योंकि भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी की संतान है आप और उनके शिष्य हैं, तो आपके पास तो अगाध ज्ञान होगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी असंतुष्टि का क्या कारण है। अनुवाद, श्री वेद व्यास ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वह सब सही है, फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ, अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू यानी बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान युक्त व्यक्ति हैं। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की एकता आत्मा से करता है, इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित है, और यही समस्त विषादों का कारण है। इसकी पहचान सदा नहीं हो पाती, भले ही कोई भौतिकतावाद का कितना ही बड़ा पंडित क्यों न हो। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण की सिद्धि के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। नारद के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे दी गई। श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत ही सुंदर बताया कि इस संसार में क्योंकि जितना भी ज्ञान है, जो कुछ भी ज्ञान है, वो किस चीज को केंद्रित करके किया गया है, शरीर या मन। यानी कुछ ऐसा ज्ञान है जिससे आपकी शरीर को संतुष्ट किया गया है ना, जैसे ज्ञान बढ़ता है इस शरीर कैसे स्वस्थ हो और इस शरीर को आप कैसे अच्छे से अच्छा आना सारी चीजें प्रोवाइड करो, इस तरह से मतलब कुछ भी आप नॉलेज प्राप्त करोगे तो ये शरीर या मन के विषय में कि कुछ ऐसी चीजें भी सिखाई जाती है, मन को केंद्रित करना है, बस खाली योग आसन किया जाता है बस मन को संतुष्ट करने, लेकिन ये कृत्रिम विधि है। ये आप खाली योग को धारण करके या ज्ञान को प्राप्त करके आप आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। आत्मा एक अलग चीज है जिसको सिर्फ और सिर्फ भगवान के विषय में बताकर, भगवान की बात करके, भगवान की लीलाओं का गुणगान करके, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके ही संतुष्ट किया जाता है। आज वेद व्यास जी नारद जी से अपने इस असंतुष्ट का कारण पूछ रहे हैं कि मैंने इतना सारा ज्ञान दिया है, इतना सब कुछ है मेरे, मैंने बताया है, इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, इतने सारे वेदों में शरीर और मन को संतुष्ट करने की सारी विद्या। अब वेदों में क्या है, हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है ना, वेदों में आपके शरीर और आपके मन को संतुष्ट करने की हर विधि है। वेदों को क्या कहा गया, निगम कल्पतरु, ये कल्पत्र वृक्ष है। यानी कि कल्पत्र वृक्ष का क्या मतलब होता है, जिसके नीचे आप बैठकर जो विश करो वो आपकी पूरी हो जाए, है ना। अगर किसी को धनवान बनना है वेद आपको बता देंगे ऐसे बनना, अगर किसी को सुंदर बनना वेद आपको बता देंगे कैसे बनना, अगर किसी को पुत्र चाहिए वेद आपको बता देंगे कैसे करना, अगर किसी को भौतिक कोई भी संपत्ति चाहिए, कोई भी संपदा चाहिए, वेद आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं। अगर किसी को इस भौतिक जगत में सुखी नहीं रहना है, स्वर्ग लोक जाना है, तो वेद आपको बताते हैं कैसे जाना है। अगर किसी को इस संसार में रह रहकर ये सारी चीजों से, झंझट से, रिश्तों से अगर थक गया है, तो वेद आपको बताते कहाँ जाना है, आपको मोक्ष कैसे प्रदान करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीजें वेदों में बताई गई हैं, लेकिन आज यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वो धर्म नहीं है जो भगवान को प्राप्त कराने के लिए कहे, ये वो धर्म है जो अर्थ को प्राप्त करने के लिए कहा जाए कि धर्म उससे क्या फायदा, धर्म वो वाला धर्म जो करने के बाद जीव ये सोचे कि इस धर्म करने से मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा, ये वो धर्म नहीं होता है। वास्तव में भक्ति होती है जो इन समस्त चार पुरुषार्थ से आगे निकलकर पंचम पुरुषार्थ कहलाती है। ये चार पुरुषार्थ तो केवल मन और शरीर से रिलेटेड है, तो वो धर्म केतव है जो आपको इस भौतिक धरातल पर चाहे 14 लोक में कहीं पर भी संतुष्टि की अगर किरण दिखा रहा है तो वो कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप आत्मा हो, आप इन भौतिक लोकों में रहकर सुखी नहीं हो सकते। तो धर्म, उसके बाद अर्थ कि मैं कैसे अपनी सकाम कर्मों का फल प्राप्त करूं, काम, इच्छाएं, ये चाहिए ये चाहिए, ये वासना, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या, जब जीव इन समस्त धर्म करने से, अर्थ कमाने से, अपनी इच्छाएं पूरी करने से अतृप्ति फील करे और कहे कि ये सब नहीं चाहिए, मैं थक गया हूँ, अभी मुझे मोक्ष चाहिए, तो मैं ब्रह्म ज्योति में समाना चाहता हूँ, यह सायुज्य मोक्ष। तो ये सब बताया वेदव्यास जी ने अपने वेदों में, हर एक चीज के विषय में बताया, और महाभारत के विषय में भी बताया। महाभारत में भी क्या, उसने भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताया, लेकिन एक नायक की तरह के, एक जैसे दूसरे भी कैरेक्टर हैं, कृष्ण भी एक कैरेक्टर है, ये थोड़ा, ये जो कैरेक्टर है वो थोड़ा विशेष है, लेकिन ये भी सामान्य कैरेक्टर की तरह, ऐसे नहीं कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बात नहीं बताई कि बाकी जितने भी हैं एति चंद सकला पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो बताया ही नहीं। फिर अगर ये बताया ही नहीं, ये छुपा के रखा इतना गूढ़ रहस्य जिससे समस्त जीवों का कल्याण होगा, तो भला जीव कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसीलिए भागवतम महापुराण को शुरू करने से पहले ही दूसरे श्लोक में कह दिया, धर्म प्रोषित केतवो तप्रमत परमो निर्मत सराणं सदा। इसमें मैंने कोई भी केतव नहीं रखा है, इसमें कोई भी चीज नहीं छुपाई है, मैंने इसमें हर चीज क्लियर बताई है कि कृष्ण ही जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने सब कुछ सही से बताया, आपने जो कहा है वो भी सही, लेकिन फिर भी मैं अभी संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी को कह रहे कि जब तक हम भौतिक शरीर और मन को संतुष्ट करने की कोशिश करते रहेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकेंगे, और इस संसार में क्योंकि ज्यादातर शरीर और मन से रिलेटेड सारा ज्ञान दिया जाता है, होता है, तो फिर कोई भी भौतिकतावादी चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, ऐसा जो हृदय की जो असंतुष्टि है, आत्मा की जो असंतुष्टि है, उसका मूल कारण कभी भी नहीं बता सकता। इसका मूल कारण, हृदय की असंतुष्टि का मूल कारण तो केवल नारद जैसे पुरुषों के पास प्राप्त हो सकता है, जो सिद्ध होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो परंपरा से आए होते हैं, केवल वही आपके हृदय की असंतुष्टि का रियल कारण बता सकते हैं। यहाँ पर एक और बात समझने की है कि वेदव्यास जी इतने ज्ञानी थे, इतने शास्त्र लिखे, इतना विस्तार किया ज्ञान का, फिर भी अपने गुरु के सामने झाड़ नहीं रहे हैं कि मैंने कितना सब कुछ किया है। आज का कोई एक, आज के वक्त क्या होते हैं, मतलब जो कुछ थोड़ा सा भी हम कार्य करेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि हम उसका बखान करना चाहते कि मैंने ये किया, मैंने देखो ये किया, मैंने अभी शास्त्र वेदों का लिखना, वेदों का रचयिता, ये सब तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो संभव ही नहीं। किसी बुक को भी ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर भी बता देंगे भाई हमने देखो इसको बुक को ट्रांसलेट किया, हमने इसको प्रूफ राइटिंग किया, हमने इसको ये किया, हमने ना इतना अच्छा। और कोई भी हो, आप चाहे सत्वगुण में हो, रजोगुण में हो या तमोगुण में हो, कोई भी हो, अपनी जो कार्य करेगा ना उसका बखान करेगा। सत्वगुणी लोग क्या करेंगे, आपको पता है मैंने कितनी स्कूलें खोली हैं, आपको पता है मैंने कितना मंदिर में, उस मंदिर का निर्माण हो रहा था मैंने इतना डोनेशन दिया, यहाँ पर ये मंदिर में पता है पानी का एक टैंक भी नहीं लगा हुआ था, फिर मैंने वाटर ये फिल्टर लगवा के दिया, उस मंदिर में मैंने ये कार्य किया, उसमें ये करा, यहाँ पर सारे गरीबों को मैं ये करवा करता हूँ, हर हर हफ्ते में ये यहाँ पर ये कार्य करता हूँ। सत्वगुणी लोग ये बताएंगे, बखान करेंगे। फिर भी रजोगुणी लोग क्या करेंगे, आपको पता है अपनी, आपको पता है मैं जब मैंने स्टार्ट किया ना अपना लाइफ, तो मैं वहां पर एक ना छोटा सा ठेला लगाता था, बर्गर बेचता था, फिर ऐसे करते 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 देखो आज मेरे पास इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने मैंने मेरे पास है ना, इतना बड़ा मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ, ये हो गया। तो उसका बखान करेंगे। तमोगुणी लोग भी अपनी बखान करेंगे। तमोगुणी लोग क्या कहेंगे, आपको पता है कि मैं एक टाइम पर कितना शराब पी सकता हूँ, आपको पता है कि मैं कितना, कोई भी तमोगुणी लोग होंगे ना वो भी अपना बताएंगे कि मैं इतनी सिगरेट पीता हूँ, इतना है ना चाय पीता हूँ या फिर ये करता हूँ। तो हर कोई जीव अपनी बताता है कि अपना मैं कितना ज्यादा ग्रेट हूँ, लेकिन यहाँ पर वेद व्यास ने अपने गुरु के सामने अपनी ग्रेटनेस को नहीं झाड़ा, बल्कि बोला कि आपने कहा वो तो सत्य है लेकिन फिर भी मुझे असंतुष्टि हो रही है, लेकिन आप तो बहुत महान हो ना, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, आपके पास बहुत ज्ञान है, आप मुझे बताओ ना मेरे मेरी असंतुष्टि का क्या कारण है। और आगे वे कहते हैं श्लोक नंबर 6, कृपया मेरे साथ पढ़िए। सवै भवान वेद समस्त गुह्यम् उपासितो पुरुषः पुराणम् परावरेषु मनसैव विश्वम् श्रीचैत्यवत्यतिगुणै रसोऽङ्गः। स वै भवान् वेद समस्त गुह्यम् उपासितो पुरुषः पुराणः परावरेषु मनसैव विश्वम् सृजत्यवत्यतिगुणैरसङ्गः। स वै भवान् वेद समस्त गुह्यम् उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेषु मनसैव विश्वम् सृजत्यवत्यतिगुणैरसङ्गः। स वै भवान् वेद समस्त गुह्यम् उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेषु मनसैव विश्वम् सृजत्यवत्यतिगुणै रसङ्गः। शब्दों का अर्थ, सवै भवान् वेद समस्त गुह्यम्, स मन इस तरह, वै निश्चित ही भवान् यानी आप, वेद सब जानते हो क्या, समस्त गुह्यम् जितनी भी गोपनीय बातें हैं वो, उपासित हो पुरुष का पुराणा पूजित है, क्यों के यत्मना क्योंकि पुरुष भगवान पुराणा प्राचीनतम यानी पुराणतम परावरेश यानी भौतिक या आध्यात्मिक जगतों की नियंता मनसैव विश्वम मनसा अर्थात मन से एव केवल ही विश्वम यानी ब्रह्मांड को सृजत्य अर्थात सृजत्य का मतलब होता है उत्पन्न करना और अवति अति इसका मतलब होता है संहार करना और पालन करना। सृजत्य अति गुणाय रसंग है, गुणाय मतलब गुणात्म गुणात्मिक पदार्थ से असंग, यानी जो तीनों गुण हैं उनसे असंग यानी निर्लिप्त। मतलब वेद व्यास जी नारद मुनि से कहते हैं सवय भवान वेद समस्त गुणियम, कि आपको तो सब कुछ ज्ञात है, जो भी गोपनीय बातें हैं वो सब आप जानते हो। क्यों जानते हो? यहाँ पर वेद व्यास जी नारद मुनि की महानता कर रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं उनको कि आप जिसकी उपासना कर रहे हो, यानी कि वो बता रहे हैं कि आप हम जिसकी उपासना करते हैं वो जितना श्रेष्ठ होता है तो उपासक भी उसी हिसाब से। जैसे यहाँ पर संसार में भी हम देखते हैं, अगर हम किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं या बहुत बड़े है ना, जैसे राजा के अंडर में काम कर रहे होते हैं या राजा का वजीर होता है, तो भले वो राजा नहीं होता लेकिन बहुत बड़े देश का होता है, तो क्या बोलते भाई ये इस राजा का वजीर है, तो उसके हमारे मन में होता है कि ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा। तो यहाँ पर नारद मुनि को वेद व्यास जी कह रहे हैं आप क्यों सबको जानते हैं, उपासितो यत पुरुषा पुराण परावरेषु मनसैव विश्वम, कि इस संसार में आप उपासना किसकी कर रहे हो, सृजत्य यत्वत्ति, यानी कि आप जो इस संसार के भौतिक संसार, परावर का मतलब होता है भौतिक और आध्यात्मिक, उस सबको जो सृजित करता है, जो उसको संहार करता है, जो उसको पालन करता है, उसी पुरातन पुरुष की आप सेवा करते हो। और वो भगवान कैसे हैं? गुणाय रसंगे, क्योंकि वो निर्गुण है, इन जो भौतिक प्रकृति में जो गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उससे बिल्कुल निर्लिप्त है, तो क्योंकि आप उनके उपासक हो तो आपके अंदर भी वो सारे गुण हैं। आप इतने महान भगवान के उपासक हो और भगवान नारायण के अतिरिक्त आप किसी का नाम भी नहीं लेते हो, तो फिर क्यों आप सब कुछ जानते हो, आप इतने महान हो तो। अनुवाद, हे प्रभु जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक भगवान की पूजा करते हैं जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जो व्यक्ति भगवान की सेवा में शत प्रतिशत लगा होता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति भक्ति में तो पूर्ण रहता ही है, वह भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। शत प्रतिशत का मतलब होता है 100%, यानी ऐसा भक्त जो शुद्ध भक्त होता है, जो 100% भगवान की भक्ति में लगा रहता है, मन से वचन से कर्म से हृदय से आत्मा से, तो फिर उसको हर एक चीज ज्ञात हो जाती है, प्रतीक समस्त वस्तुओं का ज्ञान उसको हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति भक्ति में तो पूर्ण होता है, भक्त होता है, लेकिन ना केवल उसके अंदर भक्त की क्वालिटीज होती हैं, परंतु भगवान की क्वालिटीज भी उसके अंदर आ जाती है, यानी कि वो भी भगवान की तरह निर्गुण बन जाता है, गुण उसको नहीं बांधते हैं, वो शुद्ध सत्व में आकर स्थित हो जाता है और समस्त ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस तरह से अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। भक्त जो है वो कभी भी, ये जो वेद व्यास जी ने अपने वेदों में अष्ट सिद्धियों के विषय में भी बताया कि है ना, आपको कैसे अणिमा लगीमा, कि आप कैसे सबसे बहुत बहुत हल्का कैसे हो सकते हो, बहुत बहुत भारी कैसे हो सकते हो, और किस तरह से पानी के ऊपर चल सकते हो, किस तरह से हवा में आप तैर सकते हो, हर एक चीज के विषय में। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये अष्ट सिद्धियां जो उन्होंने वेद व्यास जी ने अपने वेदों में बताई है वो तो भक्त के समक्ष बिल्कुल नगण्य है। क्योंकि भक्त के अंदर तो भगवान जैसी क्वालिटीज होती हैं, ये अष्ट सिद्धियां तो जानवरों की होती हैं। जानवर जैसे बटरफ्लाई होता है या मस्किटो होता है, उसको पता है हवा में कैसे उड़ सकते हैं, मछली जानती है कि पानी में कैसे तैर सकते हैं, एक ना डक को पता होता है कि पानी के ऊपर ऊपर कैसे चलते हैं। तो ये तो अष्ट सिद्धियां तो जानवरों की योनियों को भी प्राप्त होती है। इसके लिए भगवान का भक्त कभी भी ना इच्छुक नहीं होता है। तो श्री रूपा जी बोल रहे हैं आगे, नारद जैसा भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि के विलक्षण कार्य कर सकता है। उनके पास इतनी आध्यात्मिक सिद्धि होती है कि वो विलक्षण का मतलब होता है एकदम मार्वेलियस कार्य कर सकता है। जो भगवान जिस तरह कार्य करते हैं ऐसे कार्य कर सकता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। ऐसा उसके अंदर, भगवान के भक्त के अंदर वो सारी क्वालिटीज आ जाती हैं। हर एक व्यक्ति जो चाहता है, अब देखो हर कोई सुंदरता चाहता है, लेकिन भक्त सुंदरता क्यों चाहता है? उसे अपने को संतुष्ट नहीं करना है, वो चाहता है लोग मेरी तारीफ करें। तो एक भगवान का भक्त होगा ना, उसको देखने का दिल करता है ना, उसको देख कर अच्छा लगता है। और जब वो हर कोई चाहता है कि मैं ना अच्छा लगूं सबको, मेरी बात सुने सब कोई, सब कोई जाएंगे मैं बोलूं तो सब सुने, लेकिन भक्त जब बोलता है तब वो क्लास में क्या हो जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई नहीं बोलता, सब सुनते हैं। तो भगवान हर कोई जो क्वालिटीज अपने अंदर प्राप्त करना चाहता है, भगवान का जो भक्त होता है उसके अंदर स्वतः वो क्वालिटीज आ जाती है। श्रीला नारद शत प्रतिशत सिद्ध जीव है, यद्यपि वे भगवान के समान नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है, अभी उन्होंने कहा है कि आप सबको जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गए, लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, जो 100% भगवान की सेवा में आ जाता है, उसके अंदर भगवान के से गुण आ जाते हैं। आगे वेद व्यास जी कहते हैं श्लोक नंबर 7, कृपया मेरे साथ साथ पढ़िए। त्वं पर्यटनार्क इव त्रिलोकीं अन्तश्चरो वायुरिव साक्षी परावरे ब्राह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे न्यूनमालं विचक्ष्वा त्वं पर्यटनार्क इव त्रिलोकीं अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्राह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे न्यूनमालं विचक्ष्व त्वं पर्यटनार्क इव त्रिलोकीं अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्राह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे न्यूनमालं विचक्ष्व त्वं पर्यटनार्क इव त्रिलोकीं अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्राह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे न्यूनमालं विचक्ष्व त्वं पर्यटनार्क इव त्रिलोकीं अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्राह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे न्यूनमालं विचक्ष्व। शब्दों का अर्थ, त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोके, त्वं मतलब आप, पर्यटन मतलब विचरण करते हैं, अर्क सूर्य, इव यानी सदर्श, जिस तरह सूर्य समस्त जगहों पे दिखता है ना, हर जगह पर विचरण करता है, उसी तरह आप भी सूर्य के समान हर जगह पे विचरण करते हो। त्रिलोकी यानी तीनों लोकों में, अंतर चरो वायु इवात्मा साक्षी अंतरचरो मतलब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करने वाले वायु रिवा यानी सर्वशक्तिमान वायु की भांति आत्मा साक्षी, आत्मा का मतलब होता है स्वरूप सिद्ध, साक्षी मतलब गवाह, परावरी, परावरी का मतलब होता है कार्य तथा कारण के मामले में, यानी जो कार्य कर रहा है और जो कारण हो रहा है उसका। ब्राह्मणी धर्मतो व्रत है, ब्राह्मणी मतलब ब्रह्म में, धर्मत मतलब अनुशासन संबंधी नियमों के अंतर्गत, जो धर्म के नियम होते ना धर्मत उसके अंतर्गत। व्रत है व्रत में स्नातनस्य यानी लीन रहने से, में न्यूनमलम विचक्ष, में मतलब मेरा, न्यूनम मतलब कमी दोष, अलम यानी स्पष्ट रूप से, विचक्षव खोज निकालिए। आज अभी वेद व्यास जी ने अपनी समस्त बीमारियां बता दी उनको। वास्तव में जो गुरु होता है वो वेद के जैसा होता है, जैसे वेद डॉक्टर के पास आकर हम कैसे अपनी सारी बीमारियां बताते हैं कि देखो मुझे खांसी भी हो रही है, मुझे टेम्परेचर भी मेरा तेज हो गया है, आंखों से पानी भी आ रहा है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, आप मुझे चेक करो कि आखिर मुझे क्या हो गया है। तो उसी तरह से गुरु जो है वो हमारे आध्यात्मिक डॉक्टर होते हैं, उनके सामने भी अपनी पूरी हृदय की जो बात है ना वो निकाल के रख और ये बता दो, वो क्या कहते हैं, त्वं प्रयतन अर्क इव त्रिलोकी, आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं, और अंतःशरो वायु इव समसाक्षी, वायु रेवात्म साक्षी, और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए परावरे ब्रह्मणी धर्म तो व्रत है, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं, यानी कि वो बता रहे हैं क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णव जो 100% भगवान को समर्पित होता है, भगवान के गुणों को वो अपने अंदर धारण करता है। तो बोला आज तो आप मेरे गुरु महाराज, आप ही मेरे लिए भगवान का भगवान बनकर मेरे सामने आ गए हो, तो अतः स्नातस्य में न्यूनम अलम विचक्ष, आप चेक कीजिए, स्नातनस्य का मतलब लीन रहने वाले, न्यूनम अलम यानी कमी, अलम मतलब दोष जो है, दोष है कमी है जो मेरे अंदर, जिसके कारण मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलते हैं मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ तथा व्रतों का पालन करते हुए ब्रह्म में लीन रहने पर भी मुझ में जो अभाव है उससे खोज निकालिए, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा हो, मैं सदैव ब्रह्म में लीन होता हूँ, मैं कोई भौतिक चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं रखता हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं आनंद आ रहा है, फिर मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है, मेरे अंदर कौन सा दोष है जिसके कारण मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं, अतः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए भी ब्रह्म में लीन रहने पर भी मुझे मुझ में जो अभाव है जो दोष है उसे खोज निकालिए। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय हो। शीला प्रभुपाद जी कहते हैं दिव्य अनुभूति पुण्य कर्म देव पूजा दान दया अहिंसा तथा करे अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही गहरी बात कही है कि जो सारी चीजें वेदों में बताई गई है ना, क्या दिव्य अनुभूति है ना कि मैं आत्मा हूँ, पुण्य कर्म करके मैं अपने आप को सुखी कर सकता हूँ, देव पूजा करके मैं सुख की सामग्री प्राप्त कर सकता हूँ, दान दूंगा दया करूंगा अहिंसा करूंगा तो, और कड़े नियमों का पालन करके शास्त्रों का अध्ययन करूंगा, ये सब मनुष्य के सहायक तो बन सकते हैं, परंतु वास्तविक संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते हैं। वास्तविक संतुष्टि, जैसे ये सारी चीजें तो इन्होंने वेद में बताई है ना, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि प्राप्त तो नहीं हुई है इन चीजों से। इन चीजों से वो अभी तक बोल रहे हैं कि अभी मेरे अंदर कौन सी कमी रह गई है, मेरे अंदर कौन सा दोष है। मैंने वेदों में सब कुछ बताया है, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा और सब इतने कड़े अनुशासन ना केवल मैंने बताए, बल्कि मैं उन सब पे अमल भी करता हूँ। मैं प्रैक्टिकल चलता फिरता वेदों में सारे कार्य किए हैं। वो उसके उपरांत जैसे मैं ब्रह्म में स्थित रहता हूँ तो भी मुझे असंतुष्टि, तो देखो मेरे अंदर आखिर प्रॉब्लम क्या है, मेरे अंदर दोष क्या है, मेरे अंदर कौन सी गलती, कौन सी कमी रह गई, मैंने जो नहीं किया उसके विषय में आप मुझे बताइए, मेरी सहायता कीजिए। क्योंकि आप कोई साधारण जीव नहीं हो, आप भगवान के शुद्ध भक्त हो, और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हृदय के अंदर जो संताप होता है ना उसको दूर करने में समर्थ होते हैं। आप यहाँ पर बहुत अच्छा बताया कि आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं, मतलब हृदय के अंदर जो मेरी में अंधकार आ गया है उसको ज्ञान के प्रकाश से रोशन कीजिए। और यह बताया वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह हम सांस लेते हैं वायु हमारे हृदय के अंदर आती है, तो बोला आप भी मेरे हृदय के अंदर झांक कर देख सकते हैं और मुझे बताइए कि मैं इतने अनुशासनों का पालन किया, इतने अनुशासन किए, इतने वेदों को रचा, और मैंने हमेशा मैं ब्रह्म में स्थित रहा, मैंने कभी भी भौतिक वस्तुओं को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसके बावजूद भी ऐसा क्या किया मैंने, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी रह गई जो कि मुझे असंतुष्टि दिख रही है, मुझे आनंद नहीं आ रहा, मुझे सुख नहीं आ रहा, अब मुझे इसलिए। यहाँ पर वेद व्यास जी को दुखी दिखाया जा रहा है। वास्तव में भक्तों, वेद व्यास जी के माध्यम से भगवान हमें बताना चाह रहे हैं, जो शास्त्र है ना श्रीमद् भागवतम, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान वेद व्यास जी के माध्यम से इंसान को बताना चाह रहे हैं कि ए इंसान, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितना सारा देव पूजन कर लो, इतने सारे अनुष्ठान कर लो, इतने सारे पुण्य कर्म कर लो, बड़े से बड़ा दान दे दो, बड़ी से बड़ी तपस्या कर लो, अहिंसा कर लो, अनुशासित नियमों का पालन कर दो, लेकिन यदि तुम भक्ति नहीं करते, यदि तुम भगवान के साथ प्रेम नहीं करते, यदि भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः निर्माण नहीं करते, तब तक तुम्हारे हृदय में कभी भी शांति उत्पन्न नहीं होगी। तो कल श्री नारद उवाच, नारद मुनि अत्यंत ही सुंदर शब्दों में वेद व्यास जी की इस असंतुष्टि का कारण बताएंगे। आप सब कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं गुरु और गौरंग को प्रसन्न करने के लिए आप सबकी अच्छी सेवा कर सकूं और हम इस श्रीमद् भागवतम को अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन के लक्ष्य अर्थात कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।